Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
கல்யாணானாம் நிதானம் கலிமலமதனம் பாவனம் பாவனானாம் பாதேயம் யன்முமுக்ஷோ சபதி பரபதப்ராப்தே ப்ரஸ்திதஸ்ய விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவசசாம் ஜீவனம் சஜ்ஜனானாம் பீஜம் தர்மஸ்ய த்ருவஸ்ய பீஜம் தர்மத்துமஸ்ய பிரதிபதபதம் கிருஷ்ணே ராமநாம பூதே ராமநாம பீஜம் தர்மத்துமஸ்ய பிரபவது பவது பூதே ராமநாம விஹாய பியூசரசம் முனீஸ்வராஹ மமாங்கிராஜீவரசம் பிபந்தி கிம் இதி சுபாதாம்புஜபானகௌதுகீ சகோபவாலா ஸ்ரீமாதனோது மஹா ஸ்ரீமாதனோது வஹ. பரம் பிரேமாஸ்பத் பரமாத்ம ஸ்வரூப், ஆப் கைவல் உபநிஷத் ஸ்ரவண் கர் ரஹே ஹே, जिसमें कि अपने आत्मा की परमात्मा की चर्चा है, और उस चर्चा के लिए बताया श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेही। ब्रह्मा जी ने बताया आसुलायन जी को कि श्रद्धा से बुद्धि में श्रद्धा होती है, हृदय में भक्ति प्रेम होता है, और ध्यान योग के द्वारा इस परम तत्व को आप जान सकते हैं। तो जीव जगत और जगतपति के बारे में बताया। आप लोग जानते ही हैं, स्मारे त्वम न तु शिक्षये, हम तो याद दिला देते हैं। जैसे एक 10-15 बाल्टी रखें, या घड़ा रखें, या कोई बर्तन रखें, उसमें पानी भर दें, तो पानी भर के सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब और पानी और वो घड़ा या बाल्टी, यही चारों चीजें इकट्ठी होती हैं। बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का, साक्षी का, कूटस्थ का। जो साक्षी है, कूटस्थ है, आत्मा है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? बुद्धि में। और बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को जीव कहते हैं। इसका मतलब जीव नाम की चिड़िया अलग से नहीं है, वो प्रतिबिंब भर है। और वो जो आत्मा है सूर्य की तरह, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। चार बाल्टी रख दो तो चार प्रतिबिंब में पड़ जाएंगे, 10 बाल्टी रख दो तो 10 प्रतिबिंब में पड़ जाएंगे, और उस बाल्टी का पानी उस बाल्टी में डाल दो तो प्रतिबिंब उसमें चला जाएगा। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्का मतीश्वरा गृहीतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। ऐसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में चला जाता, उसी की जीव संज्ञा है। कल मैंने निवेदन भी किया था कि जीव को उलट दो तो ज ई बा, और उसे उलट दो तो बा ई जा बीज। तो जैसे बीज बहुत बढ़िया ब्लॉक प्रमुख से लाया गया, तो अभी उसकी कोई पहचान नहीं जब तक जमीन पर न डाला जाए। तो जमीन है सुमति, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। सुमति रूपी भूमि में जब वो जीव आता है, अर्थात जीव को सुमति मिलती है, इसको समझ लो खूब, फिर अच्छी तरह से समय पर खाद और सिंचाई, ये सत्संग है। बीज में भी खाद और सिंचाई चाहिए, ऐसे ही सत्संग चाहिए। देखो ये निश्चित बात है, जैसे शरीर को भोजन जरूरी है तैसे बुद्धि को सत्संग जरूरी है, क्योंकि उसी बुद्धि में तो प्रतिबिंब पड़ेगा। वो जितनी निर्मल होगी उतना निर्मल प्रतिबिंब दिखाई देगा, अगर मिट्टीदार होगा पानी तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब साफ दिखाई दे इसलिए साफ चाहिए। तो देखो मनुष्य का जीवन मिल गया, ये तो ब्लॉक प्रमुख से बीज मिल गया, मनुष्य के जीवन से इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ उसे सुमति मिले, सत्संग मिले, फिर संयमित जीवन हो सदगुरु के द्वारा, जो निराई करी जाती है, दोष दुर्गुण दूर हो। दोष दुर्गुण दूर अगर नहीं हुए तो मनुष्य का जीवन पाकर के भी लाभ क्या हुआ। तो इसलिए वो संयमित जीवन होना चाहिए, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और ज्ञान होना चाहिए। आत्मनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं वो इस प्रकार से समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो जीवन है ये तो संयमित होना चाहिए और अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह दृष्टि रखनी चाहिए। लक्ष्य क्या है रोज बता देते हैं, प्रकृति से राग हटाकर प्रकृति के मालिक ईश्वर में अनुराग जोड़ देना, ये लक्ष्य है मनुष्य का। ये लक्ष्य जब तक सिद्ध हो, एक जन्म दो जन्म तीन जन्म, अरे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, चाहे जितने जन्म बीत जाएं, लक्ष्य आखिर यही सिद्ध करना है, तभी कैवल्य प्राप्त होगा। एक बात तो ये जानने लायक, दूसरी बात ये जो जीव आपने अभी सुना प्रतिबिंब पड़ता है, आभास पड़ता है जल में, जल क्या है बुद्धि, बुद्धि रूपी जल में सूर्य का प्रतिबिंब जीव पड़ता है, उसको जीव कहते हैं। ये जीव की तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुसुप्ति है। तो जागृत अवस्था में तो ये जीव जो है सो भोग करता है स्थूल शरीर के द्वारा। अब इस समय जैसे जागृत अवस्था है, इसमें वो ईश्वर की सृष्टि देखता है, इस पर जरा विचार करना है, ईश्वर की सृष्टि किसनी है और जीव की सृष्टि क्या है। जीव की सृष्टि जागृत में तो मैं मेरापना है, और स्वप्न में वासना संस्कार। तो अब जरा इस पर थोड़ा सोचना यह है कि जो स्थूल सृष्टि अर्थात ईश्वर की सृष्टि में विचरण करता है जीव, सुख भी उठाता है दुख भी उठाता है, इंद्रियों से भीख मांग मांग के सुख लेना चाहता है और सुख की जगह दुख मिल जाता है। जिस इंद्री से वो भीख मांगता है हमें रूप दिखाओ, आंख ने रूप दिखा दिया, कान से कहा हमें शब्द सुनाओ, शब्द सुना दिया। जीव की आज्ञा चलती है और इसका प्रभाव चेतन मन पर पड़ता है। तो ये जागृत अवस्था है, स्थूल भूख से बताया गया, ये अन्नमय प्राण है, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये अन्न से पोषित होने के कारण स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। और जो ताकत लगती है चेष्टा होती है उसको प्राणमय कोष कहते हैं। अब ये ऐसी पुस्तक उठाई इसमें जो ताकत लगी ये प्राणमय कोष है, और उठाने के पहले इच्छा होती है ना, वो इच्छा मन की मनोमय कोष है, और निर्णय किया कि पुस्तक ही है सांप बिच्छी नहीं है उठा लो, ये हुआ विज्ञानमय कोष। और इसके उठाने से क्या सुख मिला, इस सुख का साक्षी आनंदमय कोष है। तो अब ये पांचों कोशों का साक्षी आत्मा है, पांचों कोशों को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला हमारा आत्मा है, निर्विकार, निराकार, निष्क्रिय, अलग, दूर बैठा देखता रहता है कौन सा कोश ने क्या काम किया, कौन सा कोश ने क्या काम किया। तो जागृत अवस्था में आपके सभी कोश काम करते रहते हैं, जैसे अभी आपने देखा अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, सामान उठाते हो, इच्छा करते हो तो इच्छा को फिर विवेक से जोड़ते हो। ये नियम है संसार का कि जब आपकी कोई इच्छा होगी तो जो आप जैसे श्रद्धालु सत्संगी हैं वो तुरंत विवेक से जोड़ेंगे। जैसे मान लो इच्छा हुई घर चलें, सत्संग में चलें, अब या भाई कि भाई सत्संग में चलने के लिए तैयार हुए तब तक दो साथी आ गए, उन्होंने कहा बैठो यार टीवी देखो, आज समाचार ले क्या निकला दुनियादारू में। अब आपके ऊपर है, अगर विवेक तगड़ा हो गया, कई बार मैं बता चुका कि मनी राम जो है मन, वो इंद्रिय और बुद्धि के बीच में रहते हैं, अगर इंद्रियों ने ज्यादा प्रभाव जमा दिया तो भोग में की ओर चले जाओ, हाँ ठीक है देखें लाओ टीवी देखें। और अगर बुद्धि का जोर पड़ गया तो मनी बुद्धि कहेगी अरे सत्संग में चलो वहां कुछ मिलेगा। तो ये पांचों कोश जागृत अवस्था में काम करते हैं, आपके ऊपर आधारित है कि आप विवेक से उस इच्छा को जोड़ते हो कि नहीं, और तब क्रिया करो। तो इसी को जो इच्छा शक्ति है इसी को महालक्ष्मी कहते हैं, और विवेक शक्ति को महासरस्वती जी कहते हैं, और क्रिया काली है इसी को महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली का प्रयोग किया जाता है, और भगवान की ये तीनों प्रकृति माया है, इसको समझ लेना चाहिए खूब। अर्थात हम कोई इच्छा करें तो जल्दी तरह से क्रिया न करने लगो, पहले विवेक से जोड़ो, सरस्वती जी मिले और फिर क्रिया करो, ये नियम है। तो जागृत अवस्था में आपने सुना कि सब काम पांचों कोश करते रहते हैं। अब आई स्वप्नावस्था जो सूक्ष्म शरीर में होती है, ये स्थूल शरीर में नहीं होती, सूक्ष्म शरीर में होती है, और चेतन मन चित्त पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, और चित्त में भरे हैं संस्कार। ये तो आपको स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि जब सुसुप्ति में जीव अकेला रहता है, आनंद 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 रहता है, तो सुसुप्ति अवस्था क्यों नहीं रखता है, जागृत और स्वप्न क्यों ले जाता है जो दुख भोगना पड़े, सुसुप्ति में तो आनंद ही है, कुछ है ही नहीं। और उस आनंद का उस समय अनुभव जरूर नहीं होता है, वो तो समाधि में होता है, लेकिन तमेव भूत रहता है, उस समय अविद्या ग्रस्त रहती है और घन अंधकार रहता है, ये सब रहता है, लेकिन जगने पर आनंद का अनुभव तो होता है। तो जगने पर जब आनंद का अनुभव हुआ तो इसका मतलब आनंद के उसमें रहना चाहिए, ये क्यों जागृत और स्वप्न में चला जाता है जीव, नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न होता है। देखो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इतने प्रबल हमारे संस्कार हैं और वो संस्कार हमारे चित्त पटल पर रहते हैं। कल निवेदन किया गया था कि चित्त है एक स्टोर, उसमें न जाने कितने जन्म जन्म के संस्कार चित्त पटल पर रखे हैं, अनेक जन्मों के। कभी आप चिड़िया बने हैं, कभी आप बैल बने हैं, कभी आप चूहा बने हैं, कभी आप इंद्र बने हैं, ब्रह्मा विष्णु भी बने हैं, उन सबके संस्कार चित्त पटल पर रहते हैं, और वो संस्कार आते हैं सकाम धर्म करने से, ये भी बात है। जब आप कहेंगे कि हम फर्स्ट पास हो जाएं, 108 हनुमान जी के पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा के, तो समझो वो सकाम धर्म तुम्हारे चित्त पर प्रभाव डाल देगा। ये याद रख लो, बड़ी मोटी बात है। सकाम धर्म से संस्कार बनते हैं। अब देखो, इच्छा की तीव्रता और कर्मों की तल्लीनता, संस्कारों की शक्ति, तीनों इकट्ठे होकर के स्वप्न बनाते हैं। अब संस्कारों की कितनी शक्ति तेज है ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। तो बड़ी सरल भाषा है, आपके सबके समझ में आ रही होगी। इच्छाओं की कितनी तीव्रता है कि ऐसा काम होना ही चाहिए। कई बार मैंने देखा इतनी प्रबल इच्छा होगी वो चीज मिलनी चाहिए, वो साथी सामान हमारा है, हमारे पास आना चाहिए, तो वो साथी सामान को पाने और बचाने की इतनी तीव्रतम इच्छा जगती है। तो तीव्र इच्छा वो देखो वासनाओं बनाती है, और कर्मों की तल्लीनता, तो जितनी तीव्र इच्छा होगी और जितनी कर्मों की तल्लीनता हो वो संस्कारों की शक्ति पर निर्भर है। अब संस्कार अपने सुने कि जन्म जन्मांतर के वो चित्त पटल पर रहते हैं संस्कार, और वो संस्कार हमारे घसीट के जागृत और स्वप्न अवस्था में ले आते हैं। यद्यपि जब जीव को सुख मिलता है तो सुसुप्ति में ही रहना चाहिए, ये क्यों उसमें भाग जाता है? लेकिन भाग नहीं जाता है, संस्कार हमारे जबरदस्ती ले जाते हैं। अच्छा, पाश्चात्य दार्शनिकों ने बहुत कुछ मन पर विचार किया है, साइकोलॉजिकल एक सिद्धांत निकाला, लेकिन अभी हमारे वैदिक साहित्य तक नहीं पहुंच पाए। मन का जो स्तर है वो संस्कार का स्तर है। जैसे आप लोगों के संस्कार सत्संग सुनने के हैं, बीड़ी आपके सामने, बीड़ी की दुकान मिलेगी, शराब की दुकान मिलेगी, तमाम उधर ध्यान भी नहीं जाएगा, अवमूलन हो जाएगा। इसी को वैराग कहते हैं। वैराग माने हे उपादे शून्य चित्त वृत्ति स्थित्व, साथी सामान को, प्राकृतिक पदार्थ को बहुत मूल्य न देना, बस यही वैराग है। हम रोज सुना देते हैं कि जैसे आप त्याज्य समझते हो मलमूत्र को, और कभी अखबार में नहीं छपाते हो, कभी कहते भी नहीं किसी साथी से कि आज इतना मल हम, इतना मूत्र हम त्याग कर आए, क्योंकि त्याज्य है ही, हो तो त्यागने लायक है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थों के त्याग का महत्व तो हमारी बुद्धि में रख गया है, उसका मूल्य न दो, ठीक है, हो गया। कई बार ऐसा देखा कि आप लोग निकलते हैं रास्ता में और पूछो कि क्यों वो दुकान वो खुली थी, नहीं भाई मैंने नहीं देखा, अरे भाई आंखें खुली थी तो वो ध्यान ही नहीं, कुछ मूल्य नहीं दिया, क्या जरूरत? जिस रास्ते पे हमें चलना नहीं है उस रास्ते के कोस गिनने से क्या फायदा? एक वेदांत में सिद्धांत बना है, काक दंता न गण्यन्ते, कौआ के कितने दांत हैं इसकी गणना करने की क्या जरूरत? हाँ, अरे होंगे तो होंगे, ओके, कौआ के दांत से हमें क्या लेना देना? इसी प्रकार से जो रास्ता, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर आप चल दिए, आपको जरूरतें नहीं। तो मैंने क्या बताया कि एक प्रश्न हुआ कि सुसुप्ति में ही जीव को रहना चाहिए, वहां सुख मिलता है, आनंद आता है, ये जागृत और स्वप्न में क्यों दौड़ जाता है? क्योंकि अभी आपने सुनाई था, सो माया कल्पित भोग लोके जीव लोके, अपनी माया से, अपनी वासना से ये सृष्टि की रचना कर लेता है जीव, और फिर स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोगता, और स्वप्न में वही सुख और दुख का भोग करता है। तो ये जबरदस्ती बलादिव नियोजिता है जो अर्जुन ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाओं की प्रबलता घसीट के हमको जागृत और स्वप्न में ले आती है। और जब मन वहां आ जाता है तो मन इंद्रियों के प्रभाव में आ जाता है, बुद्धि के प्रभाव से हट जाता है। आप ही जो सुन ही चुके कि बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन रहता है। ये तो हुआ स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव के जाने की बात। बड़ा सुंदर अगले का मंत्र दिया है और वो मंत्र इसी बात को सिद्ध करता है कि ये जीव बिचारा क्यों जाता है। पुनश्च कर्मांतर कर्म योगात। देखो बड़ा सुंदर प्रयोग दिया गया है कि अरे भाई, ये कर्म जो हम करते हैं वो निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के होते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि हमको क्या करना चाहिए। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात सयो जीवा स्वपति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव ततस्तु जातम सकलम विचित्रम आधारमानंदम खंडबोधम यस्मिन् लयम् याति पुरत्रयम् च। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा। अब देखिए, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, जन कितने जन्म? क्योंकि शरीर का आपको ये भान होता है कि ये शरीर हम 50 वर्ष के हो गए, कोई कहता 60 वर्ष के हो गए, कोई 70 वर्ष के। ये सोचते नहीं कौन सा शरीर 50 वर्ष का हो गया। हर जीवन के हर 5वें 7 वर्ष बाद एक शरीर बदल गया। पहले इसी शरीर को ले लो, इसी जन्म का, इसी जन्म में 5-7 वर्ष बाद आपका शरीर बदल जाता। पहले छोटा था, बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, देखो। और परिस्थिति भी बदल जाती। एक बालिका छोटी आई, वो जन्मी और फिर बालिका हुई और फिर धीरे धीरे छात्रा हुई, पत्नी हुई, माता हुई, सास हुई, बूढ़ी हो गई। इतनी परिस्थितियां बदल गई उसी जन्म में, और देह भी बदलती गई। तो कौन सी देह का तुम जन्म मानोगे? उसी तरह से जैसे ये शरीर बदला तैसे वो भी शरीर बदल जाता है। पुनश्च कर्मांतर जन्मांतर कर्म योगात। क्या बढ़िया बात बताई। माने फिर ये जो आपने अभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था देखी, ये तीन हैं। जागृत है कर्मशाला, स्वप्न है प्रयोगशाला, सुषुप्ति है विश्रामशाला। ये तीन हैं, लेबोरेटरी समझिए। जागृत क्या बताया? कर्मशाला, एक कर्म करते रहो। और स्वप्न है प्रयोगशाला, और सुषुप्ति क्या बताई? विश्रामशाला, उसमें आराम करो। तो मैंने आपको निवेदन किया, जब विश्रामशाला है तो विश्राम ही करने के लिए क्यों बेचारा जीव जाता है कर्मशाला में और प्रयोगशाला में? है ये जाता है, वो खींच के ले जाते हैं संस्कार, जन्म जन्म के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो खींच खींच के ले जाते हैं। नहीं तो हेलो आनंद में रहे। अब पहले आपने सुना था शरीर मास्थाय करोति सर्वम, इस शरीर के साथ तादात्म करके और सुख दुख का भोक्ता बनता है। शरीर के अलग हो जाए तो कोई बात नहीं, तो परमात्मा आत्मा है ही, है निष्क्रिय है। उस शरीर के साथ मिलकर के, अभी आपने सुना ना प्रतिबिंब है, और जल में ही प्रतिबिंब पड़ेगा। अगर अंतःकरण बाधित कर दो तब जीव नाम की कोई चीजें नहीं रही। इसीलिए बताया था अविद्या और जीव ऐसे हैं जैसे वृक्ष बीज है।